तो आज से हर साल की तरह है जन्माष्टमी के अवसर के ऊपर जो कृष्ण कथा होती है वो आरंभ हो रही है, क्योंकि पूरा एक साल बीत चुका है। तो पिछले साल कौन से विषयों के ऊपर चर्चा हुई थी संक्षेप में उनका वर्णन करेंगे। हम अब 10वें स्कंध के 21वें अध्याय में पहुंचे हैं, जिस अध्याय का नाम है रेणु गीत। बहुत प्रसिद्ध अध्याय है। पिछले साल हम सुन चुके थे या उसके पहले भी कि कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विमोहित किया। कृष्ण पौगंड अवस्था में पहुंच गए और उसके बाद में कृष्ण और बलराम ने धेनुकासुर और उनके साथियों को मार दिया तालवन में। उसके बाद कालिया दमन की लीला हुई, वो ग्रीष्म ऋतु के समय था। और तुरंत बाद पहले दावानल का शमन किया भगवान श्री कृष्ण ने, उस दावानल का पान करके। इसके बाद बलराम ने प्रलंबासुर का वध किया। तत्पश्चात दूसरी बार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को दावानल से बचाया। ग्रीष्म ऋतु के बाद जैसा आप जानते हैं वर्षा ऋतु आती है। सुखदेव गोस्वामी ने बड़े सुंदर ढंग से वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन किया। संक्षेप में हम पिछले साल उसको सुन रहे थे। वैसे 6 ऋतु होते हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु। तो ये 6 ऋतु एक के बाद एक आते हैं। तो ये 3 ऋतु ग्रीष्म, वर्षा और शरद, इन तीनों का वर्णन हम सुन चुके हैं। वैसे हरेक ऋतु के विशेष गुण होते हैं और हर ऋतु में ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं। उन लक्षणों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के वर्णन में एक विशेष बात ये थी कि वो जो वर्णन करते हैं अलग अलग ऋतुओं का, तो हमें दिखाई पड़ता है कि वृंदावन में हर एक ऋतु के अंदर एक तरह का मिठास होता है, कोई अच्छे गुण होते हैं। बल्कि हर एक ऋतु में प्राय वसंत ऋतु के भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं या शरद ऋतु के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। क्रम से जब ये ऋतु आते रहते हैं साधारण बाहर इस भौतिक जगत में पृथ्वी लोक के ऊपर, तो ये अलग अलग गुण क्रम से प्रकट होने लगते हैं। लेकिन वृंदावन में कभी कभी ऐसे भी देखा जाता है कि 6 ऋतु एक साथ रहती हैं। इन 6 ऋतुओं में से श्रेष्ठ है वसंत और शरद, और इन दोनों में से श्रेष्ठ है शरद। वैसे वृंदावन के 6 ऋतु इस पृथ्वी के अन्य जगहों में जो ऋतु होते हैं उनकी तरह नहीं है, क्योंकि वृंदावन से जो भी कुछ संबंधित होता है वो दिव्य होता है। इसलिए वृंदावन के 6 ऋतु ये भी दिव्य हैं, और इनमें से शरद ऋतु सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक। और इस शरद ऋतु के समय भगवान कृष्ण ने कई लीलाएं किए थे, जैसे कि रास लीला। शरद ऋतु के समय सौंदर्य बहुत ज्यादा होता है, हरियाली सब जगह होती है, सुंदर फूल खिले हुए होते हैं, सब जगह झरने दिखाई पड़ते हैं। लेकिन शरद ऋतु का सबसे बड़ा सौंदर्य या उसका वैशिष्ट प्राकृतिक सौंदर्य नहीं है। शरद ऋतु का मुख्य ऐश्वर्य भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का वादन है। यह शरद ऋतु का मुख्य गुण है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी इस मुख्य ऐश्वर्य को, धन को, शरद ऋतु के वर्णन के अंत तक रहते हैं, रख देते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और अंत में फिर सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण के बांसुरी के बजाने का वर्णन करते हैं, और ये बांसुरी की ध्वनि सारे ब्रज में फैल जाती है, फैलकर सारे चर अचर जड़ और चेतन प्राणियों को वो उत्तेजित करती है, इस तरह से प्रभावित करती है कि कोई दूसरी ध्वनि संसार में नहीं कर सकती। हमें याद रखना है कि वृंदावन में हर एक कण चेतन है। वहां पत्थर हो या हवा हो या पानी हो, सब कुछ चिन्मय है। तो सारे पशु प्राणी पक्षी सब प्रभावित हो जाते हैं, और इनमें से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं गोपियां। वैसे तो सारे ग्वाल बालों के पास बांसुरी होती है, जैसे हम वर्णन सुन चुके हैं, परंतु कृष्ण के बांसुरी वादन में एक ऐसी विशेषता है जो कि दूसरे ग्वाल बालों के बांसुरी बजाने में नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान के बांसुरी वादन से ही सारा ब्रह्मांड मोहित हो जाता है। तो वेणुगीत का आधार क्या है इस 21वें अध्याय का? भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वालवाल मित्रों के साथ, गायों को साथ में लेकर वृंदावन के वनों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। वो अंदर प्रवेश कर चुके हैं, शहर के बाहर, नगर के बाहर निकल चुके हैं। अब कोई उनको देख नहीं सकता, कम से कम इन बाहरी आंखों से तो देख नहीं सकता, लेकिन वृंदावन के निवासी और विशेष करके गोपी वो तो 24 घंटे भगवान कृष्ण को देखते हैं, लेकिन अपने दिव्य आंखों से, अपने अंतःकरण में देखते हैं वो। हालांकि भगवान कृष्ण, बलराम और उनके मित्र इन बाहरी दृष्टि से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अपने हृदय में गोपियां भगवान श्री कृष्ण को यमुना के तट पे देख रहे हैं। उनकी पूर्व सुनी हुई बांसुरी की ध्वनि को याद कर रहे हैं। जिस समय वेणु गीत बोला जा रहा है, उस समय इन बाहरी कानों से वो वेणु की आवाज नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अपने हृदय में जो वेणु की ध्वनि उन्होंने पकड़ के रखी थी, उसके ऊपर वो चिंतन मनन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की बांसुरी वादन और उनकी अन्य लीलाओं का तीव्र स्मरण होने के कारण ये गोपियां हमेशा कृष्ण भगवान का पीछा करती हैं। उनके मन से भले शारीरिक रूप से भगवान श्री कृष्ण बहुत दूर चले गए हों, लेकिन उनका मन कृष्ण के पीछे पीछे जा रहा है। तो उनकी तीव्र स्मरण से ये भौतिक जगत के जो सीमाएं होती हैं, काल समय इत्यादि के, उनका प्रेम, उनका तीव्र प्रेम इन बंधनों को तोड़ देता है। उनका तीव्र स्मरण एक सेतु जैसा है जो कि समय और जगह को पार कर देता है। इसका मतलब यह है कि इस भौतिक जगत में ये जो दो बंधन है उनको पार करना बहुत कठिन होता है। समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति यहां से जा रहा है, हम उसको थोड़े समय तक देख सकते हैं, फिर आगे वो दूर चले जाता है, फिर हमें दिखाई नहीं पड़ता। या अगर कोई घटना बहुत पहले हो चुकी है तो शायद उसको हम याद नहीं कर सकते, लेकिन गोपियों के लिए ऐसा नहीं है। उनका स्मरण, कृष्ण स्मरण इतना तीव्र है कि देश काल का कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। हालांकि कृष्ण ने ये बांसुरी कभी और बजाई थी या भूतकाल में बजाई थी या सुबह को बजाई थी और गोपियां बाद में बात कर रही हैं, लेकिन गोपियों के सामने ये ऐसे लग रहा है जैसे प्रत्यक्ष ये लीला हो रही है उनके सामने। इसका मतलब है कि कृष्ण भक्ति में कोई भौतिक बंधन नहीं है, कोई सीमा नहीं है। यहां किसी भी जगह में बैठकर अगर व्यक्ति कृष्ण स्मरण कृष्ण कीर्तन करे तो वो भगवान के धाम में प्रत्यक्ष रूप में है। कृष्ण भक्ति चेतना के ऊपर निर्भर है, हमारी शारीरिक उपस्थिति के ऊपर नहीं। भले हम कृष्ण कथा में बैठे हों शारीरिक रूप से, लेकिन हमारा मन कहीं और है तो फिर फायदा ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर हम वृंदावन से बहुत दूर हों शारीरिक दृष्टि से, परंतु गोपियों की तरह हमारा स्मरण हो तो हम दूर होते हुए भी बहुत पास हैं। ये गोपियों की अवस्था थी। तो गोपियों का ये अहो सौभाग्य था कि उनके हृदय में कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था, और ये जो प्रेम है इतना ज्यादा तीव्र और अधिक था कि इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, और इस प्रेम को ब्रह्मा जी शिवजी भी नहीं समझ सकते, और उस प्रेम के कण को भी प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी और शिवजी बड़े लालायित होते हैं, लेकिन उनको वो प्राप्त नहीं होती। तो गोपियां इस दिन में, वैसे तो हर दिन लेकिन खास करके इस दिन, जबकि वेणु गीत वो बोल रहे हैं, कंठ उनके गदगद वाक्यों से रुद्ध हो रहा है, और ऐसे गदगद वाक्यों से वो कृष्ण लीला आपस में बोल रहे हैं जबकि वो अपने घर के कार्य करते जा रहे हैं। और इनकी महानता को उद्धव जैसे महाभागवत भी स्वीकार करते हैं। उद्धव जी ने प्रार्थना की थी कि वो भी वृंदावन में एक घास का तिनका बनने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये गोपियां इतनी महान हैं कि उनके चरण कमल की धूली मेरे सर पे पड़ सकेगी अगर मैं तृण बन गया तो। तो गोपियां इतने महान भक्त हैं। रम्या काचित उपासना व्रज वधु वर्गेण वा कल्पिता, चैतन्य महाप्रभु ने भी उनका वर्णन किया है कि गोपियों की, वृंदावन की गोपियों की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, उनके जैसे कोई कृष्ण की सेवा या कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए गोपियों का प्रेम एक आदर्श है सारे भक्तों के लिए, और ये वेणु गीत जो है ये गोपियों के प्रेम की घोषणा करता है। तो वेणु गीति अध्याय कोई साधारण अध्याय नहीं है, बल्कि ये गोपियों के प्रेम की घोषणा है। और जब हम वेणु गीत पढ़ते हैं तो हम गोपियों के प्रेम को समझ सकते हैं। तो आज मतलब जिस दिन वेणु गीत बोला जा रहा है गोपियों के द्वारा, कृष्ण भगवान जो बांसुरी बजा रहे हैं वो अति अद्भुत है। वैसे भी कृष्ण भगवान की बांसुरी अद्भुत है, लेकिन आज इसमें एक खास गुण है जो पहले पूर्व दिनों में भी नहीं हुआ करता था, क्योंकि आज कृष्ण भगवान ने इतना प्रेम, इतनी भावना उस बांसुरी में डाल दी है कि उस बांसुरी के बाहर से जो ध्वनि निकलती है वो अति अति अद्भुत है, अपूर्व है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज के दिन जब श्री कृष्ण निकल रहे थे वन के लिए तो उन्होंने गोपियों के चेहरे देखे। जब गोपियां श्री कृष्ण को वन में जाते हुए देखती तो बहुत उदास हो जाती कि अब श्री कृष्ण हमारे सामने से निकल जाने वाले हैं, वृंदावन से दूर जा रहे, जंगल में जा रहे हैं। और फिर उनकी भावना उनके मुख को देखकर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने आज इस तरह से बांसुरी बजा दी। पिछले साल जो चर्चा हुई थी हमें याद होगा कि गोपियों की संख्या लाखों लाखों में है। और गोपियों के कई दल होते हैं जिनको समूह कहते हैं। ये इन समूहों में अलग अलग तरह की गोपियां हैं, थोड़े वात्सल्य रस के, थोड़े माधुर्य रस की, थोड़े जवान, थोड़े वृद्ध इत्यादि। और हर एक समूह में और कई छोटे दल होते हैं जिनको यूथ कहते हैं। इन यूथों में एक भावना के जो गोपियां होती हैं वो एकत्र हो जाती हैं। और हर एक यूथ में कोई एक मुख्य होती हैं जिनको युथेश्वरी कहते हैं। तो युथेश्वरी प्रमुख जो वृंदावन में हैं, जैसे श्रीमती राधा रानी हैं, वो भी युथेश्वरी हैं। चंद्रा, भद्रा, चंद्रावली इत्यादि, ये सब युथेश्वरी हैं। और हरेक यूथ में भी और छोटे छोटे दल होते हैं जिनको गण कहते हैं। और इस गण में वो गोपियां जो एक भाव के हैं, लेकिन उस भाव के भीतर भी और एक जो विशेष भाव है, उस भाव को में भाग लेने वाली गोपियां वो गण में रहती हैं। तो ये वेणु गीत गण में स्थित जो गोपियां हैं वो बोल रही हैं। जगह जगह अलग अलग गण हैं। वैसे इस वेणु गीत के अध्याय में 19 श्लोक हैं, लेकिन पहले 6 श्लोक सुखदेव गोस्वामी खुद कहते हैं, वो परिचय दे रहे हैं इस अध्याय के लिए। और फिर बाकी के 13 श्लोक, मतलब 7वें श्लोक से आगे, ये वाकई गोपियों ने कही है। तो हर एक श्लोक, ये 13 श्लोकों में से हर एक श्लोक अलग अलग गोपी कहती है। हम पिछले साल अंत में इस वेणु गीत के मतलब गोपियों ने जो कहे श्लोक, उनमें से 7वें और 8वें श्लोक का वर्णन हम कर चुके हैं। और आज से, मतलब इस साल से, हम 9वें श्लोक का वर्णन शुरू करेंगे। तो पिछले 2 श्लोकों में, 7 और 8 में, गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया था और कह रहे थे कि आंखों का उद्देश्य है कि श्री कृष्ण का सौंदर्य देखें। ये सच्चा फल है। जब सृष्टिकर्ता ने हमें आंखें दिए हैं तो उनका सच्चा फल ये है कि हम कृष्ण को देखें। अगर आंखें मिलने के बाद, दृष्टि मिलने के बाद, अगर हमने श्री कृष्ण का सौंदर्य देखा नहीं, चखा नहीं, तो हमारी आंखों का रहना भी व्यर्थ है। और आगे गोपियां कहने लगी, वर्णन करने लगी किस तरह से भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनके मित्र सुंदर ढंग से सुशोभित होकर सुंदर फूलों से और वहां के धातुओं से, अंकुरों से, वो और भी सुंदर लग रहे थे और वन में जा रहे थे। वृंदावन वो तो गांव है, वहां पे कोई शहर के आभूषण नहीं थे। आजकल जो लोग आभूषण कहते हैं, करते हैं, उस तरह का आभूषण नहीं था वहां। केवल वृंदावन के सुंदर पेड़ों के, फूलों के आभूषण वो लगाया करते थे। और अब 9वें श्लोक से गोपियां अलग अलग तरह से कृष्ण के बांसुरी का वर्णन करने वाले हैं। हर एक श्लोक तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन खास करके ये 9वां श्लोक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए अब इस 9वें श्लोक के बारे में हम चर्चा करेंगे। गोप्यः किमाचरदयम् कुशलं स्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां। भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसं रदिन्यां हृष्यत्वचोश्रुमुचुस्तरवो यथार्याः। गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु दामोदराधर सुधाम गोपिकानां भुंक्ते स्वयं यदवशिष्टरसं मृदन्यः हृष्यत्वचोश्रुमुचुस्तरवो यथा याः श्रील प्रभुपाद द्वारा हे गोपियों, कृष्ण के अधरों का अकेले अमृत पान करने हैं और हम गोपियों के हेतु जिनके लिए ही वास्तव में यह अमृत है केवल स्वाद मात्र छोड़ने के लिए इस वंशी ने कौन से शुभ कृत्य किए होंगे। वंशी के बाप दादे बांस के वृक्षों ने हर्ष के अश्रु गिराए होंगे। जिस नदी के तट पर यह वृक्ष उत्पन्न हुआ होगा उस माता रूपी नदी ने हर्ष का अनुभव किया होगा, इसलिए ये खिले हुए कमल के फूल उसके शरीर के रोमों की भांति खड़े हुए हैं। कृपया अनुवाद दोहराइएगा। गोप्यः मतलब हे गोपियों, एक गोपी एक अन्य गोपी, सातवें और आठवें श्लोक अलग अलग गोपियों ने कहे थे। अब गोप्यः का मतलब है कि एक और एक गोपी बोल रही है अन्य गोपियों से, हे गोपी। जैसे यहां प्रसाद के समय मंदिर में कार्यक्रम के बाद भक्त लोग इकट्ठे होते हैं और अलग अलग दल बनाते हैं और उन दलों में केवल कृष्ण कथा करते हैं और कुछ नहीं बोलते, तो उसी तरह से वृंदावन में भी जब कृष्ण चले जाते थे तो गोपियों के अलग अलग दल हो जाते थे, कोई अपने घरों में, कोई कहीं बाहर, और अपने अपने दलों में खड़े होकर ये सब आपस में कृष्ण कथा करती। कभी एक गोपी बोलती तो कभी दूसरी, कभी तीसरी, और इस तरह से तीव्र कीर्तन श्रवण और स्मरण के करने से वो अपने घर बार को सब भूल जाते थे। कोई अपने घर के कार्य में लगे हुए होते या कोई बाहर केवल किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर बातचीत कर रहे होते, लेकिन अपने शारीरिक वातावरण को बिल्कुल भूल जाते और कृष्ण लीला में पूरी तरह से डूब जाते और उस लीला के भीतर अपने हृदय से इतना प्रवेश करने की वजह से वो प्रत्यक्ष उस लीला को अपने आंखों के सामने देख सकते थे। तो ये गोपी दूसरे गोपियों से कह रही है कि हे गोपियों, जरा सुनो, मुझे कुछ कहना है। इन गणों में, दलों में हर एक गोपी अपने हृदय की बात दूसरे गोपियों को सुना रही है कि उसने क्या अनुभव किया इस कृष्ण लीला के स्मरण से। ददाति प्रतिगृणाति, दान देना और लेना, भुंक्ते भोजयते चैव, गुह्यम आख्याति पृच्छति, षड्विधा प्रीति लक्षणम। रूप गोस्वामी बताते हैं भक्तों के बीच में प्रेम के लक्षण क्या होते हैं। उनमें से गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपने हृदय की बात दूसरों को समझाना और दूसरों की बातें, जो उनके हृदय की बातें सुनना, मतलब भक्ति की बात है। तो गोपियां यहां बता रही हैं उनके तीव्र प्रेम की बातें हृदय खोल कर बता रही हैं। तो यह गोपी, गोपी शब्द का अर्थ क्या है? वैसे गोप और गोपी, गोप तो पुलिंग है, गोपी स्त्रीलिंग है, तो गोप शब्द कहां से आया? गोपालक या गोपाल, जो गायों का पालन करते हैं, तो उसका स्त्रीलिंग हुआ गोपाली। तो गोपाली फिर और थोड़े संक्षेप में गोपी हो जाता है, या गोप, गोप या गोपी। तो गोपी शब्द का पहला अर्थ है कि जो गाय की रक्षा करते हैं, गाय का पालन करते हैं। जो महिलाएं ऐसा करती हैं उनको गोपी कहते हैं। लेकिन गोपी शब्द के और अर्थ भी हो सकते हैं। गोपयति इति गोपी, गुप्त शब्द का अर्थ है कि जो छुपा हुआ है, जो किसी एकांत स्थान में हो रहा है, जो सबको मालूम नहीं है, रहस्य है। तो गोपी शब्द का एक अर्थ और ये है कि गोपियां अपने हृदय के अंदर जो तीव्र गाढ़ प्रेम है उसको छुपा रहे हैं और एकांत स्थान में वो बातचीत कर रहे हैं। किन से छुपा रहे हैं गोपियां ये प्रेम, कोई बता सकते हैं? गोपियां तो खुला बोल रहे हैं, तो अपना जो हृदय का प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति किन से छुपा रहे हैं? भगवान से नहीं छुपा रहे हैं, उनके संबंधियों से, खास करके उनके सांस से। हर एक गोपी अपने सांस से डरती है। जैसे राधा रानी, जैसे जटिला है राधा रानी की सांस, जब गोपियां आपस में बात करती हैं तो जब अचानक सबका ध्यान रहता है कृष्ण कथा में, अचानक कोई गोपी देखती है कि अरे जटिला आ गई, तो बात फैल जाती है, जटिला आ गई, जटिला आ गई। तो जैसे जटिला शब्द आता है, समझो कि जैसे किसी चीज में अचानक कोई आनंद आ रहा है और अचानक उसमें कुछ मजाक किरकिरा हो गया तो सारा दुख एकदम फैल जाता है सब जगह, वैसे जटिला या किसी सांस का नाम सुनने से हो जाता था वहां। सब गोपियां कृष्ण कथा कर रही हैं लेकिन सांस वगैरह आके उनको डांटने लगेंगी, ये सब क्या चल रहा है, घर में चलो। तो अपने सगे संबंधियों को, खास करके अपने बुजुर्गों से, उनके हृदय में जो कृष्ण के प्रति तीव्र प्रेम है वो छुपा रहे हैं और इस छुपाने में आनंद ज्यादा बढ़ता है। इसका तीव्र प्रतिबिंब हम यहां देखते हैं भौतिक जगत में भी, लेकिन मूल तो कृष्ण लीला में देखा जाता है। इसलिए इसको पारखी परकीय रस कहते हैं। परकीय रस मतलब जो प्रेम विवाह के बाहर होता है, और स्वकीय रस मतलब जो प्रेम विवाह के भीतर होता है। द्वारका का रस है स्वकीय रस और वृंदावन का रस है परकीय रस। वैसे बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो सारे गोपियों का विवाह हो चुका है, हालांकि उनका कमर उम्र कम है, लेकिन आप तो जानते हैं कि पुराने समय में उम्र कम उम्र में ही शादी हुआ करती थी। तो ये गोपियों की शादी हो चुकी है, उनके पति भी हैं, सास वगैरह हैं, ससुर हैं, सब हैं। लेकिन तो अभी गोपियों के संग में आकर वो अपने हृदय की बात को व्यक्त कर सकते हैं, भला अपने घर में कैसे कह सकते हैं? जब वो शादीशुदा हैं तो किसी दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षण उनका है, वो कैसे घर में जाकर बता सकते हैं? उनको डांट तो पड़ने ही वाली है। तो गोपी शब्द का अर्थ है कि अपने तीव्र कृष्ण प्रेम को वो सुरक्षित रखते हैं अपने केवल अपने हृदय में, और अगर बोलते भी हैं तो किसी एकांत स्थान में जाकर अन्य गोपियों के संग जो उसी भाव के हैं। गोपी शब्द का और एक भी अर्थ है गोप। गोप धातु का मतलब है संरक्षण करना। तो वो अपने शरीरों का संरक्षण करते हैं केवल इस आशा से कि उनको एक दिन कृष्ण भगवान के सुंदर दर्शन का अमृत मिलेगा। जब वृंदावन छोड़ के कृष्ण चले गए मथुरा, वापस नहीं आए, तो गोपियों का जीवित रहने के लिए एक ही कारण था, वो है आशा कि कृष्ण लौटकर आएंगे और फिर हम उनके सुंदर मुखारविंद का दर्शन कर पाएंगे। इस अमृत की अभिलाषा से ही वो अपने शरीर को बनाए रखे, इसलिए ये गोप धातु संरक्षण। तो ये है गोपी शब्द के अर्थ। तो एक गोपी दूसरे गोपियों से कह रही है, क्या कहती है? किम आचरत अयम कुशलम स्म वेणुर। वेणु की बात कर रहे हैं। अब ये श्लोक पूरी तरह से कृष्ण के वेणु के ऊपर केंद्रित है, केवल वेणु के बारे में बात करने वाले हैं इस श्लोक में। तो एक गोपी कहते हैं किम आचरत अयम, अयम मतलब ये वेणु, कुशलम स्म वेणुर, कि इस वेणु ने कौन से पुण्य किए होंगे पूर्व जन्मों में, कितनी सुकृति की होगी, कितने तीर्थ स्थानों में भ्रमण किया होगा, कितने पवित्र नदियों में कुंडों में स्नान किया होगा, कितने यज्ञ किए होंगे, कितने शास्त्र पढ़े होंगे, कितना दान दिया होगा, कितने व्रतों का पालन किया होगा कि उसे ये सौभाग्य मिला है। बहुत सौभाग्यशाली है ये। तो हमें जानना चाहिए कि इस बांसुरी ने किस तरह के व्रत वगैरह किए हैं, क्यों, ताकि हम भी करें और हम भी बांसुरी की तरह बन जाएं, क्योंकि बांसुरी तो बहुत भाग्यशाली है। तो बांसुरी का भाग्य क्या है? जो गोपियां हैं वो बांसुरी को इतना भाग्यशाली क्यों समझते हैं? पहली बात तो ये है कि बांसुरी हमेशा श्री श्री कृष्ण के पास रहता है, कभी भी श्री कृष्ण से दूर नहीं रहता। जब श्री कृष्ण वन में जाते हैं गायों को चराने के लिए, तब तो बांसुरी बजाते बजाते जाते हैं, और जब जंगल में रहते हैं प्रसाद ले रहे होते हैं तो बांसुरी को अपने कमर के पट्टी के बीच में डाल देते हैं, तो बांसुरी उनके शरीर के इतना करीब रहता है। यहां तक कि जब श्री कृष्ण रात को सोते हैं तब भी बांसुरी अपने हाथ में रख के सो जाते हैं। जैसे आपने देखा हो कभी वो छोटे बच्चे पुतलियों को वगैरह वो पकड़ के सो जाते हैं, तो वैसे श्री कृष्ण अपने बांसुरी को लेकर सो जाते थे। ऐसा बताया जाता है कि जब माता यशोदा श्री कृष्ण को स्नान कराती है तब भी श्री कृष्ण बांसुरी को छोड़ते नहीं है, बांसुरी रहती है, बांसुरी का भी स्नान हो जाता है। तो गोपियां सोच रही हैं कि देखो ये बांसुरी कितना सौभाग्यशाली है कि इससे 24 घंटे भगवान का इतना निकट का संग मिलता है, एक क्षण के लिए भी यह बांसुरी भगवान से दूर नहीं जाता। लेकिन हमारी क्या दुर्दशा है, हम तो श्री कृष्ण के पास रह ही नहीं सकते हैं, हम तो स्त्रियां हैं और वैसे भी हमें अपने घर के काम करने पड़ते हैं, और श्री कृष्ण सुबह को जाते हैं जंगल में, शाम को आते हैं, दिन भर हम उनको देख नहीं सकते, और केवल उस समय हम देख सकते हैं जबकि वो वन में जा रहे होते हैं, और वो भी चंद क्षणों के लिए, और फिर जब आ रहे होते हैं तब थोड़ा बहुत देखते हैं। जब शाम के समय गोपियां जान लेती कि कृष्ण आ रहे हैं, तो अपने अपने घरों के ऊपर जो शिखर होते थे, छत होते थे, वहां चले जाते थे देखने के लिए, दूर आए कि नहीं कृष्ण, आए कि नहीं। वो दूर से कृष्ण के आने के पहले से ही वो गोधूली की दृष्टि के लिए, दर्शन के लिए बड़े लालायित रहते। गोधूली समझते हैं ना, जब गाय के चलने से जो धूली ऊपर उड़ जाती थी, फिर ये धूली कृष्ण भगवान और अन्य ग्वाल बालों के चेहरे पर आ जाती और कृष्ण भगवान और भी सुंदर लगते। तो अगर गोधूली दिखाई पड़ती तो गोपियां समझ लेती कि हाँ कृष्ण भी आ रहे हैं दूर से। तो सायंकाल के पहले से ही गोपियां ऊपर से देखने लगती, आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए, एक दूसरे में खबर पहुंच रही कौन कब आए, धूली दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही। तो इस तरह से जैसे पहला दर्शन मिलता कृष्ण का, तब से आंखें फाड़ फाड़ कर गोपियां देखती। जब तक कि कृष्ण अपने घर में चले जाते, आके सीधे गायों को अपने अपने गोष्ठ में प्रवेश कराते और फिर कृष्ण वहां जाकर गायों का दोहन करने के लिए चले जाते। और सुबह को कृष्ण भगवान के बाहर निकलने से पहले ही गोपियां खड़ी रहती, चलो आएंगे कृष्ण, और अब घर में भी समस्या है, सबको दिखा भी नहीं सकते कि मैं हम इतने आतुर हैं कृष्ण को देखने के लिए, तो नाटक करते हैं घर में, ऐसे ऐसे काम करते हैं, देख रहे आए कि नहीं आए, कहाँ है कहाँ है। और जब पता चलता है कि वहां सबके प्राणी घोषणा करते हैं, वहां के कोयल, वहां के मोर इत्यादि, वहां के गाय, एकदम हंगामा मच जाता है सारे ब्रज में जब कृष्ण निकलने वाले हैं, तो सारे गोपियों को समझ में आता है कि कृष्ण निकलने वाले हैं। तो उस समय सारी गोपियां फिर आंखें फाड़ फाड़ कर देखती हैं, और जब तक कि कृष्ण वन में चले नहीं जाते, अदृश्य नहीं हो जाते, तब तक गोपियां देखती रहती हैं, और उनके ओझल होने के बाद भी वो देखती रहती हैं। और उसके बाद जब कृष्ण इन आंखों को दिखाई नहीं पड़ते, तब तक अंदर ही अंदर की आंखों से वो कृष्ण को देखते रहती हैं। और रात में जब आते हैं कृष्ण तो सो जाते हैं, तो तब कहां देखेंगे उनको। इसलिए गोपियां सोच रही हैं कि कि हम तो कृष्ण को बहुत कम देख पाते हैं, लेकिन ये बांसुरी देखो कितना समय तक ये कृष्ण के पास रहता है, और उसके लिए कोई बंधन नहीं है, साथ में रहा कोई निंदा भी नहीं करता, कोई रोकता भी नहीं इस बांसुरी को कि तुम कृष्ण के पास नहीं रहो। लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखो, अगर हम ज्यादा देखने भी जाएं, और उनके पास जाने की बात तो दूर है, ज्यादा देखने भी जाएं तो हमारी सास आएंगी, ससुर आएंगी, हमारे दामाद आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, अरे क्या कर रहे हो, चलो चलो चलो। तो देखो हमारा सौभाग्य, कितने रुकावटें, कितने अड़चन है हमारे जीवन में, हम कृष्ण के साथ नहीं रह सकते जैसे कि ये बांसुरी रहता है। लेकिन और एक दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से गोपियां बांसुरी को बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझती हैं, और वो क्या है, दामोदराधर सुधाम भुंकते, कि ये जो बांसुरी है दामोदर या श्री कृष्ण के अधर सुधा का पान कर रहा है। अधर लिप्स होंठ, सुधा मतलब अमृत। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो बांसुरी है ये भगवान श्री कृष्ण के सुंदर होठों का, अधरों के अमृत का पान करता है, क्योंकि हमेशा वो स्पर्श करता है कृष्ण भगवान के होठों से, क्योंकि श्री कृष्ण जब बजाते हैं तो बांसुरी का स्पर्श होता है उनके होठों से। तो ये अनमोल रत्न इस बांसुरी को कहां से मिल गया, और इसने कोई प्रयत्न भी नहीं किया इस रत्न को प्राप्त करने के लिए। हम तो कितना प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ये बांसुरी ने कोई प्रयत्न नहीं किया तो उसको सहज ही मिल गया। इसका मतलब है कि इसने पूर्व जन्मों में कौन से सुकृति पुण्य तपस्या इत्यादि किए होंगे न जाने, हम नहीं जानते। इस तरह से गोपियां प्रशंसा कर रही हैं बांसुरी की, कहती हैं कि ये इसका भाग्य कितना ज्यादा है कि इसको ये अनमोल रत्न मिल गया है। तो गोपियां सोच रही हैं कि ये बांसुरी तो बहुत निडर है और जो कर रहा है वो वास्तव में ठीक नहीं है। एक ओर से प्रशंसा की भावना उनके मन में है, दूसरी ओर से उनको थोड़ी ईर्ष्या की भावना भी हो रही है, और थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है बांसुरी के प्रति। क्यों आ रहा है, अपि गोपिका नाम, क्योंकि ये दामोदर अधर सुधा, ये भगवान श्री कृष्ण के अधरों का अमृत जो है वो केवल वास्तव में गोपियों के लिए है। अपि गोपिका नाम, ये गोपियों की संपत्ति है, उनका अधिकार है केवल, और किसका अधिकार नहीं है, केवल गोपियों का है। तो गोपियां सोच रही हैं कि हमसे अनुमति भी नहीं ली, हमारी संपत्ति का भोग कर रहा है ये, जो अधिकार हमारा है, हमसे अनुमति नहीं ली, पूछा भी नहीं, प्लीज थैंक यू कुछ नहीं, सीधा भोग कर रहा है। वो क्या सोच कर रहा है अपने बारे में, अपने आप को बहुत ज्यादा समझता है, बहुत बड़ा समझता है, हमारी संपत्ति का भोग कर रहा है और बिंदास कर रहा है निडर होके। अरे यहां तो ब्राह्मणी है, देवी देवता है, उनको भी नहीं मिलता, ये केवल गोपियों के लिए है, और ये बांसुरी तो क्या, ये तो केवल बांस का टुकड़ा है, वो भी सूखा हुआ, और ये इस अमृत का पान करता है। और इतना ही नहीं, ये देखो एक विचित्र बात, ये बांसुरी ये तो एक पुरुष है, पुलिंग है ना, बांस बांसुरी ये तो पुलिंग है, इस ऐसा होते हुए ये एक किशोरी की तरह व्यवहार कर रहा है, गोपी की तरह, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके लिए हम समझते हैं कि ये बांसुरी जो है इसके अंदर कोई शर्म नहीं है, निर्लज है ये, क्योंकि हमारे आंखों के सामने हमारी संपत्ति को छीन रहा है। और वास्तव में देखो तो इसकी औकात, वैसे जाति का जो है संबंध सबको रखना चाहिए, स्वजातीय स्निग्धा, ऐसे समाज में देखा जाता है कि लोग अपने वर्ग के लोगों से ही संग रखते हैं। तो गोपियां कह रही हैं कि हम तो गोप जाति के हैं, कृष्ण भी गोप जाति के हैं, तो कृष्ण हमारे लिए हैं, अब ये वेणु, ये तो वेणु जाति का है, इसने कैसे संग कर लिया। तो इस तरह से गोपियां सोच रही हैं कि ये जो अधिकार हमारे लिए है, ये गोप इस बांस में बांसुरी ने छीन लिया है। तो गोपी और भी नाराज हो गई, क्यों? वो कहती यद अवशिष्ट रसम, ठीक है बांसुरी भी इस अमृत का पान कर रहा है जो वास्तव में हमारे लिए है, लेकिन कम से कम थोड़ा पान करके हमारे लिए कुछ छोड़ भी दिया हो तो बात और थी। यद अवशिष्ट रसम मतलब इसने सारा अमृत का पान कर लिया, एक बूंद भी हमारे लिए छोड़ा नहीं। तो देखो कितना अन्याय कर रहा है हमारे प्रति। इसलिए गोपियां ज्यादा दुखी हैं कि उनको इस अमृत का पान करने का मौका नहीं मिल रहा है। गोपियां तो दुखी हैं, लेकिन बांसुरी के माता पिता और उनके जो बुजुर्ग हैं, उनके जो पूर्वज हैं, वो बहुत खुश हैं। अब हम पूछेंगे बांसुरी की कोई माता पिता होते हैं क्या? लेकिन हाँ गोपियां कहती हैं इनके भी माता पिता हैं। कौन है उनके माता? उनकी माताएं हैं नदियां और सरोवर। क्यों? क्योंकि ये बांसुरी कहां से आई? बांस से। बांस का जो वृक्ष रहता है वो नदियों में पाया जाता है और नदियों के जल से उसका पोषण होता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा अपने माँ से दूध का पान करता है, वैसे ही इन बांसों के लिए दूध तो ये नदी का पानी है और वो पी रहे हैं बांसुरी। इसलिए क्योंकि पोषण करती हैं ये नदियां इन बांसुरी के इन बांसों को, तो ये नदी जो है ये माँ के समान है और ये बड़े प्रसन्न हैं। इसलिए यहां पर गोपियां कहती हैं हृदिन्य हृष्यत। हृदिन्य मतलब नदियां और सरोवर, हृष्यत मतलब बहुत प्रफुल्लित, खुश हो गए हैं, हर्षित हो गए हैं। और इसलिए इतना आनंद उनको लग रहा है इन नदियों को देख करके, अपने बेटे को वो आनंद प्राप्त हुआ, वो सौभाग्य प्राप्त हुआ जो कि ब्रह्मा जी और शिव जी को भी नहीं मिलता है। और उनके अंदर ये सात्विक भाव प्रकट होने लगे, उनके रोंगटे खड़े हो गए। अब नदियों के रोंगटे खड़े होना ये क्या है? इसका मतलब है कि उनके अंदर जो कमल पुष्प है वो खड़े हो गए, ऐसे गोपियां वर्णन कर रही हैं। और दो तरह के आंसू होते हैं, जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तब वो रोता है और जब ज्यादा खुश होता है वो तब भी रोता है। लेकिन दुख के समय जो आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं और आनंद के समय जो आंसू होते हैं वो शीतल होते हैं। तो गोपियां सोच रही हैं कि इनके तो जो आंसू हैं वो तो शीतल हैं, इसका मतलब बहुत खुश हैं ये, इसलिए ये जो कमल पुष्प दिखाई पड़ रहे हैं इसका मतलब है कि उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये भी अष्ट सात्विक भाव का अनुभव कर रहे हैं, बहुत ही हर्षित हो गए हैं ये देखकर कि हमारा बेटा कितना भाग्यशाली हो गया है कि कृष्ण के अधरों के अमृत का पान कर रहा है। तो ये हुई माता की बात। अब रही पिता, तो पिता और दादा वगैरह कौन है? पिता और दादा वो सब बांस के पेड़ हैं और बांस के साथ साथ और भी कई पेड़ हैं, जैसे कदंब इत्यादि हैं, आम के पेड़ हैं और कई बड़े बड़े पेड़ हैं, तो ये सब उनके पिता के समान हैं। क्योंकि बांसुरी जो है वो बांस के वृक्ष से ही तो आया है, तो वो भी बड़े आनंद में है। इसलिए यहां पर गोपियां कह रही हैं त्वचो अश्रु मुमुचु स्तरवो यथार्याह। आर्या, आर्या मतलब जो हमारे बुजुर्ग हुए, जिनको अच्छी आध्यात्मिक संस्कृति क्या है वो मालूम है। तो जब कोई आर्य या सभ्य मतलब आध्यात्मिक संस्कृति में जो प्रवीण है वो जब देखते हैं कि उनके बच्चे भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो उनको बहुत आनंद आता है। ठीक उसी तरह से ये जो बांस के पेड़ हैं वो भी उन आर्यों की तरह हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारा बच्चा ये बांसुरी अब कृष्ण की सेवा में लग रहा है, तो उनको बड़ा आनंद आता है। तो अपने आनंद को वो कैसे व्यक्त कर रहे हैं कि उनके शरीर के ऊपर मतलब जो भी मधुमक्खी हैं, फिर उनकी जो मधु है वो बह रही है। उस मधु के बहने से गोपियां अनुमान लगा रही हैं कि देखो ये वृक्ष कितने खुश हैं, कितने आनंदित हैं, और साथ साथ में इनके भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि इनके शरीर के ऊपर जो फूल हैं वो भी खिल उठे हैं। इस तरह से दोनों वासुदेव के माता और पिता खुश हो गए हैं। बांस के पेड़ों के बारे में सनातन गोस्वामी एक दूसरी बात, एक दूसरी व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि वास्तव में पेड़ सुखी नहीं है, दुखी है। क्यों? क्योंकि वो रो रहे हैं कि हमें ये सौभाग्य नहीं मिला जो हमारे वंशज को मिला है, काश हमें भी ये सौभाग्य मिलता कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उस चीज की अभिलाषा करे जो असंभव है तो ये तो मूर्खता की बात है। मानो जैसे क्या किसी भिखारी को शोक करना चाहिए कि मैं राजा के संग बैठ के भोजन नहीं कर सकता? असंभव है तो क्यों शोक करना चाहिए इसके लिए? ऐसा कोई तर्क कर सकता है। लेकिन सनातन गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, ये साधारण पेड़ नहीं है, ये तो वृंदावन के पेड़ है, बड़े बुद्धिमान है ये, और बड़े बुद्धिमान होने के नाते वो बहुत दुखी हो गए हैं। तो खैर बात यह है कि गोपियां सोच रही हैं कि ये हमारे प्रतिद्वंद्वी हैं, ये बांसुरी जो हमारी संपत्ति है इसको छीन लिया है इस बांसुरी ने। इसलिए गोपियां जो हैं बड़े अनुकूल दृष्टि से बांसुरी की ओर नहीं देख रही हैं। वो सोच रही हैं कि अगर हमने भी श्री कृष्ण की सेवा इस तरह से करनी है तो हमारे लिए गोपियों का देह उपयुक्त नहीं है, हमें भी ऐसी कोई तपस्या वगैरह करनी चाहिए, और अगले जन्म में अगर हमारा सौभाग्य हो तो हमें बांस का पेड़ का जन्म मिलेगा, फिर उस बांस से शायद हम एक बांसुरी बनेगी, फिर हम ये आनंद ले पाएंगे जो कि बांसुरी ले रहा है। पिछले रविवार को हम चर्चा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु और वेंकट भट्ट के संवाद के बारे में। उसमें हमने देखा था कि भगवान कृष्ण की सर्वोत्तम लीला है रासलीला, और उस रासलीला में प्रवेश करने के लिए केवल गोपियों का अधिकार है, केवल जिनके पास गोपी का शरीर है वही मात्र रासलीला के स्थली में प्रवेश कर सकते हैं। यहां तक कि लक्ष्मी देवी और शिवजी को भी अपने अपने शरीरों में प्रवेश करने के लिए मना था, नहीं कर पाए। तो सभी को गोपी के शरीर की अभिलाषा है, ब्रह्मा जी शिवजी भी इसके लिए ललायत हैं, लेकिन गोपियां स्वयं क्या कह रही हैं? हमारा शरीर कोई काम का नहीं है, काम का शरीर है तो ये बांस का शरीर काम का है, क्योंकि इससे हम बांसुरी बन सकते हैं और कृष्ण के अधर के अमृत का पान कर सकते हैं। तो अब ये जो गोपियों की बातें हैं ये साधारण बातें नहीं है, ये पागल लोगों की बातें हैं, बराबर है ना? ऐसी बातें कोई बाहर दुनिया में करते हैं? आपने सुना कभी ऐसी बातें कि हम अगला जन्म बांसुरी का बांस का लेना चाहते हैं और ये इसकी माता है, इसके पिता है, ये खुश हैं, ये इतना बड़ा घमंडी है ये बांसुरी? ऐसी बातें कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं कहते। तो ये एक तरह का पागलपन है, लेकिन किस तरह का पागलपन? कोई दुनिया का पागलपन नहीं है, ये अति तीव्र अद्भुत कृष्ण प्रेम का पागलपन है जिसको महाभाव कहते हैं, जिसको केवल गोपियां ही जान सकती हैं और कोई नहीं जान सकता है। गोपियां बड़े निस्सहाय भाव से बात कर रही हैं, बड़बड़ा रही हैं, वो उनको पता नहीं चल रहा है कि वो क्या बोल रही हैं। उनके मन, उनकी इंद्रियां, उनकी बुद्धि उनके वश में नहीं है, केवल निस्सहाय ढंग से उनके जो हृदय के भीतर महाभाव, जो अलग अलग भावनाओं के तरंग, जो लहरें हैं उमड़ रही हैं और उनका बाढ़ आता है, जैसे वैसे बाढ़ आता है वैसे वो बोलने के लिए प्रेरित हो जाती हैं। सोच समझ के नहीं बोल रही हैं ये, बस उनके हृदय से भाव प्रकट हो रहा है। और इसी तरह से वो ऐसे बात कर रही हैं कि जैसे सभी की भावना उनकी तरह है। ये महाभागवत के लक्षण होते हैं। आप तो जानते हैं कि तीन तरह के, तीन श्रेणी के भक्त होते हैं, एक तो कनिष्ठ अधिकारी, दूसरा मध्यम अधिकारी और तीसरा उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ मतलब जो नौसुख्य भक्त होता है, मध्यम अधिकारी मतलब जो मध्यम स्तर में है, और उत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ भक्त। जो महाभागवत होते हैं वो किसी में भेदभाव नहीं करते, वो सोचते हैं कि सभी महाभागवत हैं, चाहे कितना भी पापी हो वो सोचे ये भी महाभागवत है, केवल मैं महाभागवत नहीं हूं। तो गोपियां भी इसी तरह से सोच रही हैं। गोपियां तो माधुर्य रस या श्रृंगार रस का स्वाद ले रही हैं, और जहां भी गोपियां देखती हैं वो उनको लगता है कि ये सब माधुर्य रस में है, बांसुरी भी माधुर्य रस में है, ये पेड़ भी माधुर्य रस में है, ये नदी भी माधुर्य रस में है, वो भी भगवान कृष्ण के साथ माधुर्य रस का आदान प्रदान कर रहे हैं, ऐसा गोपियों की दृष्टि है। आत्मवान मन्यते जगत, ऐसे कहावत है कि जो हमारी भावना है वो हम दूसरों के ऊपर लगा देते हैं। जो चोर होता है वो सोचता है कि बाकी सब चोर हैं, जो लोभी होता है सोचता है सभी लोग लोभी हैं। उसी तरह से गोपियां जो हैं वो माधुरी रस में के सागर में डूब रही हैं, और वो सोच रही हैं कि सभी लोग इस रस का स्वाद ले रही हैं। तो गोपियां इस तरह से बात करते जा रही हैं, बड़बड़ा रही हैं अपने अपने गणों में, अपने अपने दलों में। और फिर एक बांसुरी, एक गोपी कहती है कि देखो सखियां, ये बांसुरी हमारे दुख का कारण है, क्योंकि हमसे इसने हमारी संपत्ति छीन ली है। लेकिन क्या ये असल में बांसुरी की दोष है? ये दोष उस व्यक्ति का है जिसने ये बांसुरी कृष्ण को दी पहले। हाँ, सारे गोपी ने, हाँ कौन है वो व्यक्ति, किसकी वजह से ये बांसुरी कृष्ण के पास आई, बताओ किसको मालूम है? हाँ मुझे मालूम है, और ये कथा मैंने स्वयं पौर्णमासी से सुनी है, इसका मतलब है कि ये झूठ नहीं हो सकता। हाँ बताओ कौन है वो व्यक्ति जिसने कि इस तरह का अत्याचार हमारे प्रति किया है? तो वो कहने लगी कि देखो, आदमी जो जिसने गलत काम किया है वो है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी क्यों? जब श्री कृष्ण का आविर्भाव नहीं हुआ था उसके पहले ब्रह्मा जी आए थे यहां, और ब्रह्मा जी भी राधा कृष्ण की सेवा करना चाहते थे, तो उन्होंने राधा रानी की सेवा की, बरसाना में वो पर्वत बन गए। आप में से जो बरसाना गए हैं श्री जी मंदिर में, आप जानते हैं कि वो पर्वत जो है वो ब्रह्मा जी का रूप है, ब्रह्मा जी ने ये रूप धारण किया है राधा रानी की सेवा करने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने राधा रानी की सेवा के लिए पर्वत का रूप धारण किया, और श्री कृष्ण की सेवा के लिए उन्होंने जाके नंद महाराज को एक बांसुरी दे दी, और कहने लगे कि आपका एक पुत्र होगा भविष्य में, और इस बांसुरी को लेकर ये पुत्र बहुत सुंदर मधुर लीलाएं करेगा, तो लीजिए। तो नंद महाराज ने उस बांसुरी को स्वीकार किया बड़े आनंद से, क्योंकि कई सालों से नंद महाराज और यशोदा मैया को कोई बेटा नहीं हुआ था। तो जब ब्रह्मा जी ने आके कहा कि आपको एक बेटा होगा और ये बांसुरी बजाएगा, तो नंद महाराज ने सोचा बहुत अच्छा, बांसुरी बजाए कुछ भी बजाए तो अच्छा, बेटा हो जाएगा मुझे। तो बांसुरी स्वीकार कर लिया, और जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो फिर नंद महाराज ने ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार ये बांसुरी भगवान कृष्ण को दे दी। तो गोपियों, अन्य गोपियों को गुस्सा आया, अरे ये ब्रह्मा जी, पहले तो ब्रह्मा जी को कोस तो चुके हैं, ब्रह्मा जी को वो कहते एक बार तो उनको शाप हमने दे दिया, अब दूसरी बार भी देना पड़ेगा। पहली बार क्यों दिया था? आंखों के लिए। ये सुंदर श्लोक जो है ये गोपी गीत में आता है, गोपी गीत भी बहुत सुंदर अध्याय है, जैसे वेणु गीत है वैसे गोपी गीत है। अगर हो सके तो इस बार शरद पूर्णिमा के समय ये गोपी गीत गाएंगे। तो गोपियां कह रही हैं, अटतियाद भवान अहनी काननम
त्रुटि युगायते त्वाम पश्यता कुटिल कुंतलम श्रीमुखं चते जड़ दीक्षतां पक्ष्मकृदृशां।
तो गोपियां कह रही हैं गोपी गीत में, अटति यद भवान अहनी काननम, कि हे कृष्ण जब दिन के समय कानन या वन में जब आप अटति आप जाते हैं तो त्रुटिर युगायतम, एक त्रुटि एक क्षण भी हमको एक युग के बराबर प्रतीत होता है। त्वाम अपश्यताम, जब हम आपको देख नहीं सकते हैं तब, और हम मन ही मन में आपका सुंदर मुखारविंद देखते रहते हैं जिसके ऊपर जो अलका से आपका सुंदर चेहरा सुशोभित हो जाता है। कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते, और इस तरह से हम ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि करता है उनको कोसते हैं। जड़ उदीक्षता में जड़ है बुद्धु है, क्यों? क्योंकि ऐसे आंखें उन्होंने बलाएं जिसके पलकों को हमको बार बार बंद करना पड़ता है। आंखों का उद्देश्य है कृष्ण को 24 घंटे बिना रुकावट का देखना। अब उनको आंखें ऐसे बनाना चाहिए था जो आंखें बंद नहीं हो, लेकिन उनको बार बार बंद करना पड़ता है, और जब बंद करते हैं तो कृष्ण का दर्शन उस क्षण के लिए नहीं होता। इसलिए ब्रह्मा जी को कुछ पता नहीं, कैसे सृष्टि की रचना करना, कैसे शरीर को बनाना, आंखों को बनाना, कुछ नहीं मालूम। तो ब्रह्मा जी ने तो एक गड़बड़ तो कर दी, अब ये दूसरी गड़बड़ कर दी कि बांसुरी दे दी भगवान कृष्ण को, अब इसलिए ये हमारी संपत्ति चोरी कर रहा है। इस तरह से गोपियां आपस में बात कर रही हैं। फिर सबको ज्यादा गुस्सा हो गया, फेंक दो इस बांसुरी को। कोई गोपी कहने लगे जला डालो इस बांसुरी को, कोई कहती है नदी में फेंक डालो इस बांसुरी को, तोड़ डालो इस बांसुरी को, जो भी कुछ हो कृष्ण से छीन के ले लो उस बांसुरी को। फिर से उनका भाव शांत हो जाता है। इस तरह से वृंदावन में हर रोज चलता था। ये है गोपियों का भाव। ये दिव्य बड़बड़ाना इसको उद्दीपन भाव कहते हैं। जबकि किसी भी चीज को देखकर हमें कृष्ण भगवान के प्रति जो हमारी भक्ति है, जो भाव है, उसका स्मरण होता है, तो इसको उद्दीपन भाव कहते हैं। किसी भी चीज को देख लिया जिसका कोई संबंध नहीं हो हमारी भक्ति से, लेकिन उसका संबंध हम जोड़ देते हैं। जैसे किसी ने बादल को देखा, कृष्ण का स्मरण आ गया और वो भाव विभोर हो गया। तो ये उद्दीपन भाव का एक उदाहरण है। तो यही श्लोक भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा था जबकि वो अपने अंत लीला कर रहे थे जगन्नाथपुरी में, और उस समय उन्होंने इस श्लोक का भी स्वाद बहुत लंबे समय तक लिया। तो ये भी सुंदर लीला हम सुनेंगे चैतन्य चरितामृत के अंत लीला से। एक बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में गए थे